शब्द प्रमाण चौथा प्रमाण के रूप में स्वीकृत है न्याय दर्शन में, और ये नास्तिक दर्शनों को छोड़ करके माने जैन बौद्ध और चार्वाक दर्शन, इन तीनों को छोड़ करके लगभग सबके सब जो है ना शब्द प्रमाण को स्वीकार करते हैं। तो ये शब्द प्रमाण क्या है और इसमें इस की प्रमिति क्या है, प्रमा और प्रमाकरण क्या है, यहाँ पर इस बात को डिटेल्स में यहाँ पर समझाया जा रहा है। तो सबसे पहले शब्द का लक्षण बताते हैं कि शब्द कहते किसको हैं। कहते हैं कि आप्त वाक्यम शब्दः, आप्त व्यक्ति के द्वारा जो उच्चारित वाक्य है वह वाक्य शब्द कहलाता है। तो आप्त व्यक्ति का जो वाक्य है वह वाक्य शब्द कहलाता है। अभी तक आप यही समझते होंगे शब्द मतलब जैसे गाय एक शब्द है, गांव एक शब्द है, बालक एक शब्द है, लेकिन आज आपको ये समझिए कि शब्द क्या है। तो आप्त वाक्यम शब्द, पूरा का पूरा जो वाक्य है वह शब्द कहलाता है। और कौन सा वाक्य शब्द कहलाता है, तो आप्त व्यक्ति के द्वारा जो उच्चारित वाक्य है वह शब्द कहलाता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये आप्त क्या होता है, तो आगे लिखते हैं कि असल में इस तरह का इन्होंने लक्षण इसलिए बताया शब्द का, क्योंकि इनको शब्द को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करना है ना, तो ऐसा शब्द ये ले रहे हैं जो कि प्रमाण बनता हो और उस शब्द रूपी प्रमाण के द्वारा जो है प्रमा का लाभ होता हो, तो ऐसा जो शब्द होगा वो यही शब्द होगा आप्त वाक्यम शब्द। कोई शराबी है, कोई जुआरी है, कोई जो है भ्रष्टाचारी है, कोई मिथ्यावादी है, तो ऐसा व्यक्ति का जो वाक्य होगा उस वह यहाँ पर शब्द से नहीं लिया जाएगा, क्योंकि वह शब्द जो है ना प्रमाण नहीं हुआ। किसी शराबी कहा हुआ जो है कोई व्यक्ति उसको प्रमाण मानेगा क्या, नहीं मानेगा। इसीलिए यहाँ पर आप्त व्यक्ति के द्वारा उच्चारित वाक्य को शब्द माना गया है। थोड़ा आइडिया आ गया होगा कि आप्त क्या होता है। अब लेकिन आगे ग्रंथ में देखिए, कहते हैं कि आप्तस्तु यथाभूतस्य अर्थस्य उपदेष्टा पुरुषः, ताकि ऐसा जो पुरुष है जो यथाभूत अर्थ का उपदेष्टा है, इस तरह का जो उपदेष्टा पुरुष है वही आप्त कहलाता है। उपदेष्टा माने समझते हैं ना उपदेश करने वाला। उपदेश करने वाला ये नहीं कि सच बोलो झूठ मत बोलो, ये उपदेश वाला नहीं। उपदेष्टा का मतलब होता है उच्चारयिता, उच्चारण करने वाला। आप याद करिए, मैं पढ़े हैं ना हलंत्यम के समय उपदेश आद्योच्चारणम, कि आद्य उच्चारण को उपदेश कहा जाता है। तो वहाँ पर भी उपदेश का अर्थ क्या लिया गया, उच्चारण ही लिया गया। तो उपदेश करने वाले को क्या कहेंगे, संस्कृत में उपदेष्टा कहेंगे। तो उपदेष्टा का मतलब क्या हुआ, उच्चारयिता, उच्चारण करने वाला। अब किस तरह के अर्थ का उच्चारण करने वाला, तो कहते हैं यथाभूत अर्थस्य उपदेष्टा। यथाभूत अर्थ का जो उपदेष्टा है अर्थात उच्चारयिता पुरुष है वही आप्त कहलाता है। ये यथाभूत अर्थ क्या है, तो जो वस्तु जैसी है उसे वैसी ही बताने वाला जो है ना पुरुष वही कहलाता है आप्त पुरुष। यही है यथाभूत अर्थस्य उपदेष्टा। ये नहीं कि उसमें मिर्च मसाला लगा करके जो है ना बोलने वाला, जो जैसी वस्तु है उसको वैसा ही बताने वाला जो पुरुष है वही कहलाता है आप्त, वही कहलाता है यथाभूतस्य अर्थस्य उपदेष्टा पुरुष। क्लियर हुआ। तो ये जो शब्द का लक्षण बताया आप्त वाक्यम शब्द, इसमें पहला जो शब्द है आप्त उसका लक्षण भी बता दिया कि आप्तस्तु यथाभूतस्य अर्थस्य उपदेष्टा पुरुष। अब जो दूसरा शब्द है लक्षण में वाक्य, ये वाक्य किसको कहते हैं, तो अभी तक आप यही जानते होंगे कि रामः गच्छति ये वाक्य है, लेकिन आज जो है ना थोड़ा विलक्षण समझिए कि वाक्य किसको कहते हैं। कहते हैं कि वाक्य का लक्षण बताया जा रहा है कि वाक्यम तु आकांक्षा योग्यता सन्निधि मताम पदानाम समूह। लास्ट में क्या कहा इन्होंने, पदानाम समूहः, पदों का जो समूह है वह वाक्य कहलाता है। पद समझते ही आप ना, शब्द, शब्दों का जो समूह है, समुदाय है शब्दों का, तो शब्दों का जो समुदाय है वही वाक्य है। अब वह जो शब्द का समूह होगा, वो तो शब्द भी कई प्रकार के होते हैं, तो सारे तरह के शब्दों को नहीं लेना, सारे तरह के पदों का समूह वाक्य नहीं कहलाएगा, कुछ खास ही कहलाएगा। कौन खास पदों का समूह कहलाएगा, इसके लिए इन्होंने तीन विशेषण लगाए हैं पदानाम में। एक तो लगाया है आकांक्षा मताम पदानाम, असल में ये जो है ना आकांक्षा योग्यता सन्निधि मताम, ये मताम क्या है, जैसे श्रीमान का श्रीमताम होता है ना षष्ठी के बहुवचन में, उसी तरह से सन्निधि मान, ये आकांक्षा योग्यता सन्निधि मान जो प्रथमा में है उसको षष्ठी के बहुवचन में आकांक्षा योग्यता सन्निधि मताम कहा। और इस मताम में मतु प्रत्यय है, और मतु प्रत्यय किससे किए हैं, तो आकांक्षा योग्यता सन्निधि में द्वंद्व समास करके और फिर उस लास्ट में जो है उससे मतु प्रत्यय किया गया है। आप या तो जानते होंगे या तो नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए, और जानते हैं तो स्मरण कर लीजिए कि द्वंद्व समास जहाँ रहता है और उसके अंत में जो प्रत्यय हो या अंत में जो शब्द हो उसका संबंध जो है ना प्रत्येक पीछे वाले शब्द के साथ संबंध जुड़ता है। अब तो यहाँ पर आकांक्षा योग्यता सन्निधि में द्वंद्व समास है और लास्ट उसके लास्ट में जो है मतु प्रत्यय किया गया है, तो उस मतु प्रत्यय को प्रत्येक के साथ जोड़ना है, आकांक्षा के साथ भी जोड़ना है, योग्यता के साथ भी जोड़ना है, सन्निधि के साथ भी जोड़ना है, और ये सब है क्या, तो पदानाम जो है आगे वह विशेष्य है, उसी का ये तीनों जो है विशेषण है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा कि आकांक्षा पद, आकांक्षा मताम योग्यता बताम। अच्छा एक चीज और, ये जो मतु प्रत्यय है ना इसके पीछे में अगर अ और आ हो तो मकार को वकार आदेश हो जाता है, मादुपधायाश्च मतोर बोय बाधिभ्य सूत्र से। इसलिए जब हम आकांक्षा में मतु प्रत्यय लगा करके बोलेंगे तो मताम नहीं कहेंगे, वताम कहेंगे, ऐसे ही योग्यता में भी वताम कहेंगे, लेकिन सन्निधि में जो है ना इकार है, अकार आकार नहीं है, इसलिए यहाँ पर मकार को वकार नहीं होगा, वहाँ मताम कहेंगे। तो चलिए अब क्या वो कहते हैं इसको, तो आकांक्षा बताम पदानाम समूह, योग्यता बताम पदानाम समूह, और सन्निधि मताम पदानाम समूह वाक्यम। वाक्य किसको कहते हैं, तो अच्छा मताम मतलब युक्त, तो वाक्य किसको कहते हैं कि आकांक्षा से युक्त और योग्यता से युक्त और सन्निधि से युक्त पदों के समूह को वाक्य कहते हैं, ये अर्थ निकला। वाक्य किसे कहते हैं, आकांक्षा बताम योग्यता बताम सन्निधि मताम पदानाम समूह वाक्यम, अर्थात आकांक्षा से युक्त, योग्यता से युक्त, सन्निधि से युक्त पदों के समूह को वाक्य कहते हैं। अब यहाँ पर जो है ये जो तीन विशेषण लगाया गया, इन तीन विशेषणों से विशिष्ट जो पद है उन्हीं पदों का समूह जो है वाक्य कहलाता है। इसका मतलब हुआ कि इससे जो रहित होगा, आकांक्षा से जो रहित होगा अथवा योग्यता से रहित होगा अथवा सन्निधि से रहित पदों का समूह होगा, इन तीनों में से एक से भी अगर रहित है, तीनों से रहित हो तब तो कोई बात ही नहीं, लेकिन इन तीनों में से एक से भी अगर रहित पदों का समूह है तो वह वाक्य नहीं कहलाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब आपको ये समझना है कि ये आकांक्षा क्या होती है, योग्यता क्या होती है और सन्निधि क्या होती है, तो आगे ये स्वयं विवेचन करेंगे, लेकिन मैं सामान्य रूप से बता दूं कि पहला शब्द जो है इसमें विशेषण आकांक्षा, आकांक्षा माने समझते ही है इच्छा, तो पदार्थ का, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के प्रति जो है ना वह आकांक्षा होती है। अब जैसे देखिए आप कहेंगे गच्छति, तो गच्छति कहते ही सुनते ही जो है ना आपके मन में आकांक्षा होगी कि कह गच्छति, अब इस आकांक्षा की पूर्ति कैसे होगी? तो जब उसमें कर्ता का प्रयोग करेंगे कि देवदत्त गच्छति, तो गच्छति की जो आकांक्षा थी कह गच्छति, इस आकांक्षा की पूर्ति कर्तृपद के द्वारा हुआ हुई ना, मतलब देवदत्त के द्वारा हुई। तो गच्छति पदार्थ पद का जो अर्थ है जाता है, इस अर्थ में आकांक्षा है, किस चीज किस अर्थ की आकांक्षा है, कर्ता अर्थ की आकांक्षा है, और उस कर्ता अर्थ की आकांक्षा की पूर्ति के लिए कर्ता पद का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही केवल अगर देवदत्त कोई बोलता है और आप अगर आप देवदत्त सुनते हैं तो आपको आकांक्षा वहाँ भी होगी, क्योंकि देवदत्त पदार्थ जो है वह उसमें आकांक्षा रहती है किस चीज की, क्योंकि देवदत्त जब भी सुनेंगे तो आपके मन में प्रश्न उठेगा कि देवदत्त किम करोति, पठति, खादति, गच्छति अथवा किंचित अन्यत करोति, क्या कर रहा है देवदत्त, इस तरह से आकांक्षा होगी। फिर उस आकांक्षा की पूर्ति जब आप क्रिया पद की का प्रयोग करेंगे कि देवदत्त गच्छति अथवा देवदत्त पठति, तो इस तरह से देवदत्त पदार्थ में क्रिया की के प्रति जो आकांक्षा रहती है उस आकांक्षा की पूर्ति क्रियापद करता है, और क्रियापद में रहने वाली जो आकांक्षा रहती है कर्ता वाली आकांक्षा, उसकी पूर्ति जो है कर्ता का पद करता है। तो आपने उदाहरण में अभी देखा कि एक पद का जो अर्थ है वह दूसरे पद के अर्थ के प्रति जो है साकांक्ष रहता है, साकांक्ष रहता है मतलब आकांक्षा सहित होता है, आकांक्षा से युक्त होता है। तो थोड़ा आइडिया आ गया होगा कि ये आकांक्षा क्या होती है। तो जिन पदों का समूह वाक्य कहलाता है ना, उन पदों में परस्पर आकांक्षा होनी चाहिए। मान लीजिए कि चार पदों का प्रयोग किया गया किसी वाक्य में, तो उन चारों पदों में परस्पर जो है आकांक्षा होनी चाहिए कि इसकी आकांक्षा की पूर्ति वो करे, उसकी आकांक्षा की पूर्ति वो करे, उस आकांक्षा की पूर्ति वो करे। इस तरह से जो साकांक्ष पदों का समूह होगा वही वाक्य कहलाएगा। अब दूसरा जो है वह है योग्यता। ये योग्यता क्या है, इसमें भी पदार्थ वाली बात आती है कि वाक्य में अनेकों पद होंगे, अनेकों पद होंगे तो अनेकों पदार्थ होंगे, और उन अनेकों पदार्थों में जो है ना परस्पर अन्वय की योग्यता होनी चाहिए। परस्पर अन्वय की योग्यता मतलब पदार्थेषु परस्पर अन्वय योग्यता, पदार्थों में एक दूसरे में जो है दूसरे के साथ अन्वय की योग्यता होनी चाहिए। अन्वय माने आप जानते हैं, फिर भी याद दिला दूं, अन्वय मतलब संबंध। तो एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के साथ परस्पर संबंध होना चाहिए, और इस तरह के संबंध से युक्त पदों का जो समूह है वही वाक्य कहलाता है। तो इस तरह से एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के प्रति आकांक्षा होनी चाहिए, एक पदार्थ का संबंध जो है वो दूसरे पदार्थ के साथ होना चाहिए, इस तरह का जो पदों का समूह होगा वह वाक्य कहलाएगा। तीसरा शब्द आया इसमें सन्निधि। सन्निधि का मतलब होता है, सन्निधि शब्द का अर्थ होता है सामीप्य, माने समीप में होना। तो इसकी अगर व्याख्या करें सन्निधि शब्द की तो कहेंगे अविलंबेन सह उच्चारणम। अविलंबेन माने बिना विलंब के, बिना लेट किए हुए जो सह उच्चारण है, सह उच्चारण है माने साथ साथ उच्चारण है, तो उस उच्चारण को ही जो है ना सन्निधि कहा जाता है। अविलंबेन सहोच्चारण जो होता है उसको हम सन्निधि कहते हैं, और वह जो पदों का समूह होना चाहिए उसमें सारे पदों का उच्चारण अविलंबेन होना चाहिए। ये नहीं कि वाक्य में एक पद का उच्चारण हमने अभी कर दिया और दूसरे वाक्य का उच्चारण 3 घंटे के बाद किया, तीसरे का जो है ना उसके 3 घंटे के बाद किया। इस तरह से अगर विलंब से उच्चारण करेंगे पदों का तो उन पदों का समूह जो है कभी भी वाक्य नहीं कहलाएगा। तो अब आप को बहुत आइडिया आया होगा कि वाक्य क्या है। तो पदानाम समूह वाक्यम, पदों का समूह जो है वह वाक्य है। पद कैसा होना चाहिए, तो आकांक्षा बान पद होना चाहिए, योग्यता बान पद होना चाहिए और सन्निधि मान पद होना चाहिए। इस तरह से आकांक्षा बान, योग्यता बान और सन्निधि मान पदों का जो समूह है वही समूह वाक्य कहलाता है। क्लियर। अब एक एक करके ये बताएंगे कि ऐसा वाक्य बोलेंगे जिसमें कि आकांक्षा नहीं है इसलिए वह वाक्य नहीं है, ऐसा बोलेंगे वाक्य जिसमें योग्यता नहीं है इसलिए ये वाक्य नहीं कहलाने के योग्य है, इसमें सन्निधि नहीं है इसलिए यह जो है वाक्य कहलाने के योग्य नहीं है। तो इस तरह का जो प्रत्युदाहरण सब बताया जाएगा उसको हम अगले पाठ में पढ़ते हैं।